بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال آيت 1-19. يسألونك عن الأنفال، وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے عن الأنفال، انفال کے بارے میں، غنیمتوں کے بارے میں. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں اس سورت کا بھی شان نزول اور ان آیات کے بھی شان نزول. جو یہ پہلی آیت ہے اس کے شان نزول میں جو دو واقعات آتے ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کر دیے ہیں کہ کیوں انہوں نے سوال کیا تھا. یہ جب غنیمتوں کے بارے میں ان کو کنفیوژن ہو گئی کہ اب کس کو ملیں گی، یہ مال کس کے پاس جانا ہے، تو اب یہ ایک سوال کھڑا ہو گیا تھا. اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے مال غنیمت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. اب ایسا نہیں تھا کہ ان کو کسی کو کچھ ملنا نہیں تھا، لیکن ایک بات یہاں پہ سمجھنے کی اور وہ یہ کہ صحابہ کرام کی جو زندگی ہے اور جو ان کی ٹریننگ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹریننگ کرنی ہے، اس کے اندر یہ چیز ان کی شان کے لائق نہیں تھی. یعنی ایک ایسی چیز تھی کہ جو صحابہ اس سے بہت اوپر اللہ تعالیٰ ان کو کرنا چاہتے تھے کہ وہ اس سے بہت اوپر ہو جائیں، کہ مال کی کوئی فکر کر رہے ہیں یا یعنی یہ کس کو ملنا ہے. تو اس لیے ان کو کہہ دیا گیا کہ مال کو، مال غنیمت کی فکر چھوڑ دو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا بس. یعنی تمہارے دل کے اندر اس کی کوئی بھی بات ہی نہ آئے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی انسان مار کا جیتتا ہے، کوئی بھی اس کو فتح ملتی ہے زندگی میں، تو کبھی بھی اس کا اپنا کمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہوتی ہے. اور ان کو بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اس پہ کسی کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اہل ایمان کی جنگ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور ان کی جنگ جیتی کس کی مدد سے جاتی ہے؟ اللہ کی. تو حق بھی تو اسی کا ہے، سمجھ آئی نا؟ تو آپس میں پھر جھگڑا کس بات کا؟ تو قل الانفال للہ والرسول. اور یہاں پہ میں نے آپ کو ایک بات، ایک سوال آپ سے کیا تھا کہ غنیمت کا لفظ نہیں آیا، انفال کا لفظ آیا، کیوں؟ حالانکہ غنیمت کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے. اس لیے کہ انفال میں معنی ہے زائد چیز کا، جو بونس ہے. بونس کسی کا حق نہیں ہوتا، وہ آپ کے حق سے بڑھ کے آپ کو دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی آقا اپنی غلام کو زائد انعام دیتا ہے جو اس کا حق نہیں بنتا، تو وہ نفل ہے. تو اس لفظ میں ہی یہ بات چھپی ہوئی ہے، یہ جواب چھپا ہوا ہے کہ حق تم میں سے کسی کا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تم نے کمایا، یہ میرا ہے، نہیں، یہ اللہ تعالی کا انعام ہے. تو اس پہ کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں، اس پہ کسی کو مطلب کانٹرڈکشن کی ضرورت نہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اصلاح کرو آپس میں، آپس میں اپنے معاملے کی اصلاح کرو. یعنی ایک چیز ہو گئی تھی نا وہاں پہ، ایک سمجھ لے ایک جھگڑے کی سی کیفیت ہو گئی، تو جو کہ پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کی شان کے مطابق بات نہیں تھی، ان کی شان سے نیچے تھی. تو ان کی ابھی ٹریننگ ہو رہی ہے نا، تو ان کو کہا گیا کہ نہیں، آپس کے اندر اصلاح کرو، آپس میں اپنے تعلقات کو صحیح کرو. اور یہ بہت ضروری ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کر رہے ہوں، کہ ان کی آپس میں تعلقات اچھے ہونے چاہیے. کیونکہ یہ جو آپس میں تعلقات کا بگاڑ ہے، یہ پھر उस काम से बरकत को उठा देता। इतना ज्यादा जोर है इस चीज के ऊपर हमें दिया गया कि कयामत के दिन भी अल्लाह ताला मुसलमानों के आपस में जो ताल्लुकात होंगे उनकी इसलाह करा देगा। इतना अल्लाह ताला को ये काम पसंद है। और वो कैसे कि अल्लाह ताला उस दिन एक मोमिन ऐसा होगा कि जिसका हक दूसरे ने देना होगा और अल्लाह ताला उससे कहेंगे कि तू उसको माफ कर दे, वो कहेगा मैंने नहीं माफ करना। अल्लाह ताला उसको बहुत प्यारी प्यारी नेमतें जन्नत की दिखाएंगे और वो जब उन नेमतों को देखेगा तो कहेगा कि ये किसकी हैं नेमतें, ये किसको मिल सकती हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम्हें मिल सकती हैं, तुम इसकी कीमत दे सकते हो। वो कहता है मैं कैसे दे सकता। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम इसको माफ कर दो, यही इसकी कीमत है। तो वो उसको माफ कर देगा और फिर हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उनको फरमाएगा चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ के दोनों जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये इब्ने कसीर में हदीस मौजूद है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो इतना ज्यादा अल्लाह ताला के नजदीक ये चीज पसंदीदा है कि मुसलमानों के आपस के ताल्लुकात अच्छे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक अमल ना तुम्हें बताऊं कि जो नमाज से रोजे से इससे ज्यादा सवाब के एतबार से है। यानी नमाज सोचे कि कितनी इंपॉर्टेंट है चीज, मरते दम तक माफ नहीं है। और रोजा, एक नफरी रोजा आप रखते हैं तो जहन्नुम से 70 साल की मुसाफत से इंसान को दूर कर देता है एक नफली रोजा। लेकिन इससे भी ज्यादा सवाब की चीज है अब वो है आपस की, आपस में सुलह कर लेना, झगड़ा ना खड़ा करना, झगड़े को छोड़ देना, दूसरों की सुलह करा दें, आपस में सुलह कर लें। वो भी हदीस आती है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें जन्नत के दरमियान घर की बशारत देता हूं कि जो हक पे होते हुए झगड़ा छोड़ दे। यानी सिर्फ इसलिए आप नहीं लड़ रहे कि मेरा हक भी है, मेरी बात भी सही है, मैं मगर मैं लड़ाई नहीं करना चाहती। बस सिर्फ इस वजह से अगर आप झगड़ा छोड़ देते हैं तो जन्नत के दरमियान में घर की बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अब कितनी ही जगह हैं जहां पे हम ना हक लड़ रहे होते, हमारा हक भी नहीं होता लेकिन बस लड़ रहे हैं। तो यहां पे तो कहा गया हक है भी तब भी ना लड़ो, तब भी झगड़ा छोड़ दो। यहां पे ना हक की बात नहीं हो रही, हक वाले की बात हो रही है। बहुत दफा होता है हम कहते हैं मेरी बात सही है, मैं जो कह रही हूं सही है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अब इस बात को करने से झगड़ा खड़ा होगा तो हम कह देते ना क्या फायदा लड़ने का, छोड़ो जाने दिया मैंने। चाहे वो शौहर के साथ है, चाहे वो बच्चे के साथ है, या रिश्तेदारों के साथ है, या हमसायों के साथ है, किसी के साथ भी। अक्सर औकात ऐसी बात होती है कि हक वाले को अपना हक छोड़ना पड़ता है ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। अगर हर कोई यही कहेगा कि मैं हक पे हूं, कोई भी नहीं अपने आप को ना हक कहता। कोई आप दुनिया में ऐसा देखा आपने जो कहे कि नहीं मैं हक पे नहीं भी हूं फिर भी मैं लड़ू? सारे ही अपने आप को हक पे समझते हैं लेकिन होता एक ही हक पे, ठीक है। लेकिन शैतान जो है ना ये आके बीच में वसवास डालता है और बीच में रंजिशें डालता है, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करता है, ताल्लुकात को बिगाड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि ताल्लुकात बिगड़ेंगे जहां पर तो वहां पे कुव्वत खत्म हो जाएगी। कहीं भी आपको पता है ना डिवाइड एंड कॉन्कर का जो रूल है वो इसी तरह है ना, डिवाइड कर दो लोगों को और फिर आप उनको फतह कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कौमों में नहीं है, हर जगह पे, किसी इदारे में है, किसी जगह पे भी, आप कोई फैमिली में भी लड़ाई झगड़े हैं ना, उनकी कुव्वत खत्म हो जाती है, उनका रोब खत्म हो जाता है, उनमें कुछ नहीं रहता। फिर शैतान आसानी से घुस जाता है। जहां पे झगड़े हैं वहां पे बेसकूनी है, बेचैनी है, बदमनी है। तो झगड़े चाहे फिरकों के हों, चाहे बरादरियों में हों, चाहे घरों में हों, चाहे कौमों में हों, झगड़ा बुरा ही है। झगड़ालू इंसान अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हम बहुत अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं ना, कि मैं जो हूं ना, मैं ऐसा उसको सुनाऊंगी या मैं ऐसा करूंगी, देखना आगे से कुछ कह नहीं सकेगी। और आपको पता है कि आपकी जुबान इतनी है कि आप दूसरे को मतलब दबा लेंगे, आपको पता है कि दूसरा बोल नहीं सकेगा, तो इस पे इतने खुश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है झगड़ालू इंसान, ठीक है? तो ताल्लुकात अच्छे रखने वाला, सुलह सफाई करने वाला, असुलहु खैर कुरान में है, सुलह खैर है, सुलह में भलाई है, और झगड़ों के अंदर बुराई है। तो क्या हम चाहते हैं अपने लिए, हमारे इर्द गिर्द का माहौल कैसा रहे? अगर आप चाहते हैं कि आप खुद भी पुरसकून रहें और अपने इर्द गिर्द भी सबको पुरसकून रहने दें, तो झगड़ों से परहेज करें जितनी हद तक कर सकते हैं। और बहुत हद तक हमारे अपने हाथ में होता है कि हम झगड़े खड़े ना होने दें, या झगड़ा हो जाए तो हम उसके ऊपर जलती पे तेल ना डालें, बल्कि उसको बुझाने की कोशिश करें। आग को, वो एक आग ही है, जला देती है सारे घर को। कितने ही झगड़े हैं जो एंड अप होते हैं तलाकों पे, कितने ही झगड़े हैं जो कताए रहमी पे एंड अप हो जाते हैं, उसके बाद एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। अब वहां पे होता यही है ना, कि एक शुरू करता है और फिर दूसरा, फिर वो करते करते नौबत यहां तक आ जाती है कि कट ऑफ होने पे इंतहा होती है। तो मुसलमानों के ताल्लुकात की इसलाह पे कितना जोर दिया गया, वअतीउल्लाह वरसूलहू, और इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर वाकई तुम ईमान लाने वाले हो ना, अगर वाकई तुम्हारे अंदर ईमान है, तो क्या करो? फत्तकुल्लाह, पहली बात अल्लाह का डर, यानी फिर वाकई इंसान अल्लाह से हया करे, जो कुछ बोल रहा है, जो मामलात कर रहा है, किसी और का डर नहीं, अल्लाह का डर कि मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है ना। तकवा क्या है? गॉड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस रहें अल्लाह ताला के बारे में, उसकी उसकी नजरों का एहसास रखें अपनी जिंदगी में, और आपस के ताल्लुकात को सही करें। आज देखें, कहीं आप चले जाएं, चाहे मस्जिद ही क्यों ना हो, ताल्लुकात कहीं पे सही नहीं, बिगड़े हुए हैं, लोग एक दूसरे के साथ सलाम दुआ करने के लिए भी राजी नहीं। एक दूसरे को देखते मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, वो दूसरी तरफ मुंह कर लेता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें बेहतर पता है कौन सा है? जो पहल कर लेता सलाम करने में, वो बेहतर है। तो बिगाड़े रखे ताल्लुकात, हम सोचते हैं कि हम कौन सा किसी से लेके खाते हैं जो हम इनके साथ ताल्लुकात सही करने की कोशिश करें। इसलिए नहीं करना क्योंकि हमें उनकी जरूरत है, इसलिए नहीं करना। जरूरत के बाद तो फिर आपने अपनी मानी ना, फिर तो आपकी जरूरत थी, फिर तो आपने करना था, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म, अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त करें। देखिए, अगर आप दीन का काम कर रहे हैं और आपके आपस के ताल्लुकात ही सही नहीं है, कैसे काम चल सकता है? यही तो चाहता है शैतान। तो वो काम जो है कभी भी बराबर नहीं हो पाते। इसलिए जब आप मसलन किसी भी इदारे में हैं, दीन के काम में, कह रहे हैं हम अल्लाह की खातिर करते हैं, तो इन चीजों को अवॉइड कीजिए। किसी की बातों को माइंड करके इतना बड़ा फसाद खड़ा कर देना, या फिर किसी को कुछ सुना देना, या ये इन चीजों से परहेज करें। क्यों कर रहे हैं परहेज? हम तो सुना सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला का हुक्म है, वो असली हो जाता है बहनी को, और जो मेरी बातें हैं इससे ये ना हो कि आपस के ताल्लुकात खराब हो जाए। इसलिए मैं खामोश रहूं, इसलिए मैं दूसरों की बातों को माइंड करके और इधर उधर मुंह बना के बैठ नहीं जाऊं, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन है जिसकी बहुत जरूरत है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर आप वाकई ईमान लाने वाले हैं, तो हर सतह पे जिधर भी आप हैं, मैं आपको ये कहूंगी कि इसको पल्ले बांध ले, असली उजाता बहनी को। ये सिर्फ सहाबा कराम के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये उसके लिए जो चाहता है कि मैं ईमान वाला बनूं, मैं मोमिन बनूं। आगे हम इतनी जगह पे कुरान पाक में पढ़ेंगे मोमिनों के लिए ये, मोमिनों के लिए ये बशारतें, ये खुशखबरियां। अगर हम मोमिन की जो शराइत हैं वो ही पूरी नहीं कर रहे मोमिन होने की, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम मोमिन हो तो ये करना पड़ेगा, वरना वरना क्या है। वो डज दिस मीन इन कुन तुम मोमिन, अगर तुम मोमिन, यानी कि अगर ये नहीं करोगे तो तुम मोमिन नहीं हो, फिर मोमिन की कैटेगरी से निकल गए हैं, समझ आई। तो अगर मोमिन बनना चाहते तो नाम रखने से मोमिन या मोमिना नाम रखने से मोमिना नहीं हो जाएंगी। ये अल्लाह हमें मोमिनात बना दे, वो मोमिनात बना दे। आप दुआएं कर रहे हैं, आपको कुरान बता रहा है कि आप इससे मोमिना बनेंगी, आपको इस चीज की परवाह ही नहीं। ताल्लुकात जैसे मर्जी होते रहे, हमें नहीं इससे फिक्र। वातीउल्लाह व रसूलहू, इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। अब अल्लाह ताला की इताअत तो कुरान और रसूल की इताअत हदीस। अव्वल तो कुरान पाक भी वही उसके ऊपर अमल कर सकता है जो हदीस को लेता है। अगर कोई हदीस का इनकार कर देता है तो वो कुरान पाक को के ऊपर भी अमल नहीं कर सकता, क्योंकि हदीस ही बताती है कुरान पे अमल कैसे करना। आज लोग खड़े होकर कहते हैं हमें तो कुरान की जरूरत है, हदीस की जरूरत नहीं। तो हदीस के बगैर तो मुमकिन ही नहीं कुरान। मैं युतीर रसूला फकद अता अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया ना जो रसूल की इताअत करेगा उसने ही असल में अल्लाह की इताअत की। और यहाँ पे आज लोगों को परवाह नहीं रसूल की इताअत करने की, वो कहते हैं बस कुरान है ना, हदीस को साइड पे करो। फिर फरमाए इन्नमल मुमिनुना, बेशक मोमिन जो सच्चे मोमिन है वो कौन है, असल मोमिन जो है वो कौन है। अल्लदीना, वो लोग हैं इदा जुकिरल्लाहु, जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का तो उनका हाल क्या होता है, जिक्र किस तरह से जिक्र किया जाता है, यानी नमाज में खड़े होते हैं या वो कुरान पाक सुनते हैं, ये अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है। तो जब अल्लाह का जिक्र आता है ना, वजिलत कुलूबुहुम, तो क्या हो जाते हैं, ऐसे नहीं कि वो बेपरवाह रहते हैं, ऐसे नहीं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि उनके दिल डर जाते हैं। ये होते हैं मोमिन। यहाँ पे मोमिनों की खसूसियात बताई जा रही हैं, क्योंकि आगे आयत नंबर 4 में आप देखेंगे उलाइक हुमुल मुमिनून हक्का, ये हैं असल मोमिन जिनके अंदर ये खूबियां हैं। तो ये खूबियां हमारे अंदर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं है तो इनको पैदा करना है, इसलिए कि इनके बगैर हम मोमिनात नहीं है, मोमिना की कैटेगरी से निकल चुके हैं। और ये हम खुश ना होते रहेंगे हम नमाज तो पढ़ते हैं तो इसलिए बस हम मोमिना ही नहीं। वजिलत कुलूबुहुम, यानी उनके दिल डर जाती हैं। कैसे डर जाते हैं, क्यों डर जाते हैं? देखिए एक तो अल्लाह ताला का डर वो है ना कि उसके अजाब के खौफ से इंसान गुनाहों को छोड़ दे, ये भी डर है, ये आम मुसलमानों को होता है। लेकिन एक डर है अल्लाह के जलाल, उसकी अजमत, इसका डर कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी जात है कि मैं तो सोच ही नहीं सकता, मेरी तो सोच की इंतहा भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, मेरा रब कितना बुलंद है, कितना अजमत वाला है, कितनी ताकत वाला है, कितनी कुदरत वाला है। ये वो खौफ है जो अंबिया को होता था, ये वो खौफ है जो मलाइका मुकर्रबीन को होता है। और जितना ज्यादा कोई अल्लाह ताला के करीब होता है उसको उतना ही ज्यादा खौफ होता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बुखारी की हदीस है, तुम सबसे ज्यादा मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ और तुम सबसे ज्यादा मैं अल्लाह को जानने वाला हूँ। यानी जो अल्लाह से करीब होता है ना, डर नहीं हो जाता कि मुझे वो परवाह नहीं है, वो तो गफूर रहीम है, बस ठीक है, ऐसे नहीं हो जाता कि उसको कोई कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है, वो गुनाह करे तब भी वो खुश है, डोंट केयर। नहीं, जो अल्लाह ताला के को जानना शुरू कर देता है ना, तो उसको उसके दिल में एक डर होता है, ऐसा वो वाला डर नहीं जैसे आप कहीं कोई शेर से डर है, जैसे कोई बिजली के स्विच से डर लगता है, तार से डर लगता है, ऐसा नहीं, अल्लाह ताला की असमत की वजह से। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मैं वो चीजें देखता हूं जिसको तुम नहीं देखते, और मैं वो आवाजें सुनता हूं जिनको तुम नहीं सुनते। आसमान चिरचिरा रहा है, यानी खौफ खुदा से जो डरी हुई आवाज निकलती है ना चिरचिराना, और उस पर हक है कि वो चिरचिरा है। अल्लाह की कसम, अगर तुम इन चीजों को जान लो जिनको मैं जानता हूं, तो तुम हंसो कम और रो ज्यादा, और बिस्तरों पर औरतों से लुत्फंदोज होना छोड़ दो, और तुम घर से बाहर भाग जाओ और अल्लाह से फरियादें करो। ये तिर्मिजी की रिवायत है। अजीज आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कि आप मुझे कुरान सुनाएं, तो उन्होंने सूरह निसा पढ़ी थी। हम जब सूरह निसा पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जब वो आयत आई थी, फकैफ इदा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाए शहीद, क्या हाल होगा उस वक्त जब हम हर उम्मत से एक गिरोह लाएंगे और हम आपको उनके ऊपर गुरु गवाह बनाएंगे, हर उम्मत से गवाह उठाएंगे और हम आपको इन सब पे गवाह बना के लाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस बस। अब अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने सर उठा के देखा तो आपकी आंखों से आंसू जारी थे, इतना खौफ खुदा था कि वो दिन क्या होगा, मैं अल्लाह के सामने खड़े होना और गवाही देनी होगी। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे तो एक जनाजे के साथ गए थे, तो किनारे पे बैठे और आप रोने लगे, हत्ता कब्र की मट्टी भीग गई, इतना रो। फरमाया आप मेरे भाइयों इसके लिए तैयारी कर ले। नहीं, कितना खौफ खुदा था ना उनके अंदर, वो जब अल्लाह ताला की आयात को भी सुनते थे ना तो वो डर जाते थे उनके अंदर। यही तो मसला कि हमारे अंदर ना खौफ खुदा की कमी है, खौफ खुदा नहीं रहा। कुरान भी सुनते हैं तो कोई डर नहीं, ऐसे लगता है कि जैसे सारी आयतें ये जो लोगों के लिए, हमारे लिए क्या है ना। एक सहाबी तो जो जब उन्होंने पढ़ा था इजन शक्कत समा फकानत वरदतन कद्दीहान, तो बदन के बाल खड़े हो गए, रोते रोते दम घुटने लगा, बोलते जा रहे थे हाँ जिस दिन आसमान फट जाएगा, हाँ जिस दिन आसमान फट जाएगा मेरा क्या हाल होगा, आए मेरी बर्बादी। तो वो यानी वो उसको दिल पे लेते थे। हजरत उमर कुछ पढ़ रहे होते थे ऐसी आयात नमाज में, तो सहाबा फरमाते हैं आखिरी जो सफ थी उस तक उनके रोने की आवाज आती थी, और ऐसे लगता था जैसे हंडिया खोल रहे, यानी आवाजों से नहीं रोते थे चीखे मार मार के, पर जैसे ना सीना घुट रहा होता है, जैसे अपनी अपने आप को इंसान दबा रहा होता है ना और फिर भी रो रहा है, तो उसके सीने से कैसी आवाज आती, उस तरह आवाज आती थी। अब्दुल्ला बिन रवाहा के बारे में आता है, अपनी बीवी की गोद में सर रखा हुआ और बीवी ने देखा रो रहे हैं, वो भी रोने लगी, पूछा क्यों रोती हो, आपको देखा मैं भी रोने लगी। फरमाया कि मैं तो इस वजह से रोता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर एक को जहन्नुम के ऊपर से गुजरना है, पता नहीं मैं पार भी हूंगा कि नहीं, पता नहीं मेरी निजात हो भी कि हो भी होएगी भी कि नहीं। कैसी बातों को वो सोचते थे ना, कि सोचे सोच देखें कैसी थी, वो जब कुरान को पढ़ते थे तो अपने ऊपर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कितनी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है ना। अब ऐसी सूरतें जैसे सूरह वाकया है, सूरह मुरसलात है, सूरह हुद, फरमाया इन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया, इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका अपने दिल पे लेते थे, इनको इतना इनका असर लेते थे। हालांकि तो वो हैं जिन्हें की बख्शिश हो चुकी है, उनको थोड़ी कोई वहां पे ऐसा हिसाब किताब है, लेकिन उनके अंदर कितनी खशियत इलाही, अल्लाह ताला के आगे खड़े होने का जो खौफ है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अगर तुम रो ना सको तो रोने जैसी शक्ल ही बना लो, लेकिन अल्लाह ताला को ये पसंद है बंदे की आजजी उसके सामने। से हमारे एक शेख थे तो वो कहने लगे कि एक मस्जिद के अंदर कोई अपना बच्चा लाया हुआ था, तो बच्चा बड़ा रो रहा था, तो लोगों ने कहा, वो जैसे लोग पीछे पड़ जाते हैं कि कोई ले जाओ बच्चे को यहाँ पे क्यों लेकर आए, तो उन्होंने कहा ना रोको ना इस माँ को उठाओ यहाँ से, इसलिए कि अब मस्जिदों में भी रोने वाले बहुत कम रह गए। बड़ी अच्छी लगी मुझे ये बात के वाकई होने वाले बहुत कम रह गए। असल में हमारे अंदर खौफे खुदा नहीं रहा, हम वो आंसू नहीं अल्लाह को दिखाते कि जिसमें शर्मिंदगी हो, जिसमें एक परेशानी हो कि अल्लाह तेरे आगे कैसे खड़े होना है। हमने आंखें भी खुश हो गई, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदा मोमिन की आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू निकले, चाहे वो मक्खी के सर जितना हो, इतना सा देखे कितना छोटा होता है मक्खी का सर, फिर वो आंसू उसके रुखसार के सामने के हिस्से को छू जाए बस, अल्लाह ताला इस पर दोज़ख़ की आपको हराम कर देता। इब्ने माजा की ये रिवायत। तो अल्लाह ताला के आगे कभी तन्हाई में रोएं भी, हम फिल्में और ड्रामे देख के तो रोते हैं, हम अपने घर में कोई मसले मसाइल हो जाए तो उस पे तो रोते हैं, हमें कोई ब्रांड नेम की चीज़ ना मिले, कोई हमारे तरक्की नहीं मिली, कोई हमें या इतने पैसे नहीं मिले जितने दूसरों को मिल रहे हैं, तो हम बहुत गमज़दा होते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो इसके ऊपर रोते हैं कि मेरे गुनाह बहुत हैं और अल्लाह मैं कैसे पार होंगी। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं, अक्सरियत हमें से ये सोचती है कि बियर होके कोई मसला नहीं है हमारा, वैसे ही पार हो जाना। और बहुत सारे लोग माइंड भी करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते भी हैं आप क्यों ऐसी बातें हमें करती हैं कि जिसमें कोई खौफ खुदा की बात होती है, बस ऐसी ही बातें किया करें जो रहमतों की होती हैं, तो खौफ खुदा वाली बातें ना हमारे सामने किया कर, यानी डरना चाहते ही नहीं। हालांकि आपको पता है हदीस में आता है कि दो अमल सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाने वाले, आप बताएं मुझे वो कौन से दो अमल, कौन से वो दो अमल होंगे, सोचे ना कौन से वो दो अमल हैं जो सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाने वाले हैं। या आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो बताएं क्या है, एक खौफे खुदा और दूसरा हुस्ने अखलाक। हुस्ने अखलाक होगा तो इसलाह होगी आपस में, खौफे खुदा होगा तो देखें जन्नत मिल जाए। खौफे खुदा, मगर डरना नहीं कोई चाहता। कहते हैं डरने वाली बातें भी ना बताएं हमें, मेरे पास ईमेल्स आती हैं, नहीं हमें बस ऐसी ही ना बस डराने वाली बातें ना किया करें ज्यादा। और डरोगे नहीं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला दो खौफ और दो अमन जमा नहीं करेगा, यानी जो यहां पे डर गया अल्लाह उसको आखिरत में बेफिक्र कर देगा, और जो यहां पे बेफिक्र हो गया अल्लाह ताला आखिरत में उसको खौफजदा कर देगा। तो दो खौफ और दो बेफिक्रियां जमा नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। यहां पे भी आप बेखौफ रहे वहां पे भी बेखौफ, डरना है तो यहां पे डर जाए वहां पे बेखौफ कर देगा, अमन दे दे, बेफिक्र कर देगा आपको। यहां पे आप बेफिक्र रहें कोई मसला नहीं है, तो फिर वहां पे डरेंगे। क्या चूज करते हैं आप, अल्लाह अकबर। अगर अगर इंसान इतना डर ले ना अल्लाह से जितना वो यहाँ पे फकरो फाके से डरता है, जॉब के जाने से डरता है, बीमारियों से डरता है, तो जन्नत में चला जाए। हम इन चीजों से कितना डरते हैं, आज देखिए कोविड से कितना डरते हैं, कैंसर से कितना डरते हैं, आए किसी के सामने नाम ही आ जाए तो वो उसकी तो गश पड़ने लगते हैं, मरने से कितना डरते हैं। अल्लाह इतना अगर जहन्नुम से डरने लगो, अल्लाह के आगे खड़े होने से डरने लगो, जवाबदेही से डरने लगो, हिसाब किताब से डरने लगो, बड़ा कुछ मिल जाएगा। पता है ये खौफ क्या करता है, ये इंसान को गुनाह से रोक लेता है, ये इंसान को गुनाहों से बचा लेता है। और जब बेखौफी होती है ना, इंसान ना डर होता है, डर खौफ नहीं होता तो फिर बस करता चला जाता है बेपरवाह होके। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, उन्होंने इतनी एक दफा भूख लगी भी थी ना, तो उनका गुलाम एक कुछ खाना लेकर आया, तो एक लुकमा उसमें से उठा के मुंह में डाला, तो गुलाम ने कहा कि आप पहले तो बड़ा पूछते थे कि ये कहाँ से लाए हो, किस कमाई से है, आज आपने पूछा नहीं। फरमाते इतनी भूख लगी हुई है कि पूछने की वो नौबत नहीं है, इमेजिन करें कितनी भूख लगी हुई उनको। तो वो फरमाने लगे बताओ फिर, कहने लगा कि मैं जमाना जाहिलियत में कौम पे से गुजरा था, उनको कोई मैंने
यानी कोई फालसी निकाली थी, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि अगर ये सही हो गई तो फिर वो मुझे कुछ देंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने कहा तेरा खाना खराब हो, हलक में हाथ डाल डाल के क्या करने की कोशिश की, मगर वो एक लुकमा था और भूख की इतनी शिद्दत थी, खाली पेट से वो कैसे निकलना था। तो किसी ने कहा पानी बहुत पिए तो फिर निकलेगा, पानी पी पी के क्या की, यहां तक कि वो एक लुकमा निकाल के छोड़ा। किसी ने कहा अल्लाह पे रहम करे, इतनी आपको अपनी मुशक्कत इतनी करने की क्या जरूरत है, एक लुकमा ही है ना, एक ही निवाला था ना, और गलती से ही आपने खाया था। फरमाया अगर मेरी जान भी इसके साथ निकल जाती तो मैं इस निवाले को निकालता, क्योंकि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो जिस्म हराम से परवरिश पाता है वो उसके लिए आहा है। तो मुझे ये डर हुआ कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा इस लुकमे से परवरिश ना पाए। कितना खौफ खुदा देखे ना, कितना था। उसने वो अली बिन माबद के बारे में, एक मुहद्दिस हैं, उनके बारे में फरमाते कि मैं एक किराए के मकान में रहता था, एक दफा मैंने कुछ लिखा और उसको खुश्क करने के लिए मट्टी की जरूरत हुई। तो आपको पता है ना पहले जमाने में वो कच्ची दीवारें होती थी, तो उन्होंने वो थोड़ी सी मट्टी खुरच के ना दीवार से, तो वो उस जो लिखा था उसके ऊपर डाल दी ताकि वो ड्राई हो जाए। फिर ख्याल आया कि ये मकान किराए का है, ये मट्टी मेरी तो नहीं है, इन्होंने रहने के लिए किराए पे दिया है, मट्टी लेने को तो नहीं कहा। साथ ही ख्याल आया इतनी सी मट्टी से क्या फर्क पड़ता है। और रात को ख्वाब में देखते हैं कोई आदमी खड़ा हुआ और कह रहा है कल को कयामत में पता चलेगा कि इतनी सी मट्टी क्या चीज है। अल्लाह अकबर, जिनमें खौफे खुदा होता है फिर उनके एकदम अलर्ट भी वो हो जाते हैं, फिर उनके दिल कांप जाते हैं, फिर वो जब अल्लाह की आयात पढ़ते हैं तो फौरन उनका जो ईमान है वो एक ताजा भी होता है और फौरन खौफे खुदा आता है। हमें भी देखना चाहिए कि जब हम अल्लाह की आयात पढ़ते हैं, अब आखिर माशाल्लाह अब 9th पारे पे पहुंच गए, तो क्या होता है, क्या अल्लाह की आयात पढ़ने के बाद दिल की हालत सेम रहती है या दिल की हालत बदलती है? वो तो कुछ लोगों के बारे में तो ये आता है ना कि उनकी तो जिल्दें, ये इसमें है सूरह जुमर में, तक़शअरु मिन्हु जुलूदुल लदीना यख्शौना रब्बहुम, कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी खालें और उनके दिल अल्लाह की जिक्र की वजह से नरम हो जाते हैं। तो क्या हमारे भी ऐसे हाल हैं? और अगर कुरान नहीं ना दिल को नरम करता तो कोई और चीज नहीं कर सकती, कोई और जरिया नहीं। तो अपने दिलों की हालत का जायजा जरूर लिया करेंगे, और इसको कैजुअली नहीं हम सुनेंगे, कैजुअली नहीं सुनना, ये अल्लाह का कलाम है। जैसे इकरमा रजी अल्लाह फरमाते थे ना, जब कुरान पाक सामने आता था तो आंसू निकल आते थे, फरमाते थे ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। तो ठीक है, जब नहीं समझ आती थी तो सारे समझ ही नहीं आती थी तो क्या दिल ने कांपना है या क्या वजिलत, वजल जो होता है ना वो वाला खौफ होता है कि जिसमें किसी बड़े का, जैसे कोई बड़ा है, मिसाल के तौर पे कोई सदर है, कोई कोई वजीर आजम है, या आपके खानदान के कोई बहुत बड़े बुजुर्ग है, तो कैसे इंसान उनके सामने हो जाता है ना, बड़े का एक रोब होता है ना, आप कांपने लगते हैं, हाय कैसे होगा, पसीने आने लगते हैं, इसके सामने कैसे जाएंगे। तो जब नहीं समझ आती थी ये कलाम तब तो अलग बात थी, अब समझ आने लगी है तो अब तो दिल पे असर होना चाहिए ऐसा। वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब कुराने पाक उनके ऊपर पढ़ा जाता है ना उनके सामने, ईमान वाले कौन होते हैं, ईमान वालों की खसूसियात है ना, जब कुराने पाक उनके सामने अल्लाह की आयात की तिलावत की जाती है उनका ईमान वैसा नहीं रहता, बढ़ जाता है। अब देखिए कितने ही लोग हैं कहते हैं जब फ्राइडे को हम क्लास सुनते हैं हमारा ईमान इतना बड़ा होता, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे पौधा मुरझा जाता पानी के बगैर, इसी तरह जैसे वीक गुजरता रहता है ईमान भी डाउन होने लगता है। आप छुट्टियां करके देख लें, आप कहीं इधर उधर चले जाएं, महीना डेढ़ अपना वेकेशन पे आप चले गए, क्लासें कोई नहीं ली, क्या हालत होती ईमान की, सच बताएं, क्या ऐसा ही रहता है जैसे कि आप रेगुलर सुन रहे हैं, जैसे ऐसे लगता है दिल की धुलाई हो रही है।
इससे पता चलता है ईमान ज़ादत हुम ईमाना, बढ़ा देती ईमान को। तो इसका मतलब ईमान अगर बढ़ता है तो घटता भी तो होगा ना, घटता भी तो होगा ना। तो किस चीज से उसे ईमान बढ़ता है? कुरान से ईमान बढ़ता है, इसका मतलब ईमान वालों का तो बढ़ता है। हाँ, मुनाफिक जो होते थे ना, वो कहते थे, वो कुरान सुन के कहते थे जब मजलिस से निकलते थे, किसका ईमान बढ़ा है तुम में से, यानी उनके लिए ये एक तजिया बात होती थी, किसी का ईमान बढ़ गया तुम में से। लेकिन जो वाकई ईमान वाले होते हैं उनका ईमान बढ़ता है। तो अगर कुराने पाक के साथ जुड़ने से आपका ईमान बढ़ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कुरान की मजलिस में बैठते हैं, आयतें सुनते हैं, ध्यान कहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ा क्या पढ़ा जा रहा है, क्या है, वैसे के वैसे उठे हैं। ईमान भी एक पौधा है ना, इसको भी आबियारी चाहिए, इसको भी पानी चाहिए, इसको ये वही का पानी दिया करें। वही इलाही को बारिश से तशबीह दी गई है कुरान में, पानी से तशबीह दी गई, और ये वाकई हमारे ईमानों के लिए बारिश है। वरना ये ईमान मुरझा जाए। और आप देखें बहुत सारे लोग जब कुरान से नहीं जुड़े होते, कहने को मुसलमान ही है वो भी, लेकिन ईमानों की हालत क्या होती है? क्योंकि ईमान जितना बढ़ेगा आप नेकियों की तरफ उतना बढ़ेंगे, आप गुनाहों से उतना बचने की कोशिश करेंगे। जितना आपका ईमान मुरझाया हुआ होगा ना, नमाजों में दिल लगेगा, नमाजें स्किप भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सोए रहें फजर पे कुछ फर्ज नहीं होता। लेकिन जितना आपका ईमान फ्रेश होगा, हेल्दी होगा, उतना ही ज्यादा आप अपनी नेकियों की फिक्र करेंगे, गुनाहों से बचने की आपको शदीद ख्वाहिश होगी। आप ठीक है, ये नहीं है कि मोमिन से कभी कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन उससे गुनाह हो जाता है तो तब भी वो अपने आप को मलामत करता है, तब भी वो अपने अल्लाह के आगे झुकता है। तो इसलिए ये ईमान को बढ़ाने वाली चीज है कुरान। लोग सोचते हैं ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो एक कोर्स कर भी लिया, अब हम क्या बार बार कुरान का कोर्स करते रहे? जबकि अल्लाह ताला फरमाता है, इजा तुलिया तलाई में आया तो ज्यादा तुम ईमान, उनका ईमान बढ़ता है। क्या हम नहीं चाहते कि हमारा ईमान बढ़ता ही जाए, कहीं घट रहे नहीं, स्टेगनेंट चीज नहीं है? देखें, याद रखें, या तो आपका ईमान बढ़ा, अगर बढ़ नहीं रहा ना तो वो जरूर घट रहा है, कभी उस पे एक ही उस पे नहीं होगा। तो इसलिए बेफिक्र होने की जरूरत नहीं कि हमें कुछ परवाह ना रहे। कभी देखिए भी कि मेरे ईमान की क्या हालत है। जेवर को तो चेक करते हैं, जेवर है कि नहीं, घट तो नहीं रहा, किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया, मेरे सेट उतने के उतने हैं कि नहीं, अपनी हर चीज का हम ध्यान रखते हैं, किसी ने उठा तो नहीं ली, चुरा तो नहीं ली। इधर शैतान चोरी करके ले जाए ईमान और पता ही ना हो, इधर ईमान घटता जा रहा है। इतनी कीमती मता है जिसको लेके हमने मरना है, अगर इसके साथ ना मरे तो खराबी है, बर्बादी है। ये ईमान वो है जो हमारी सबसे कीमती चीज है इस दुनिया में, इससे ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं। ईमान नहीं तो कुछ नहीं है। क्योंकि कयामत के दिन काफिर कहेंगे, या लैतनी कुंतु तुराबा, काश में मट्टी होता। वो कहेंगे हम जानवर ही होते तो अच्छा था, क्योंकि जानवर मट्टी हो जाएंगे। ईमान वो चीज है कि इसकी हमें हिफाजत करनी है, इसकी हमें बहुत यानी इसके बारे में अलर्ट रहना है, मेरे ईमान की क्या हालत है, मेरा ईमान बढ़ रहा है कि घट रहा है, अगर घट रहा है तो फिक्र करें कैसे मैं इसको बढ़ाऊं। वह आला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पे तवक्कल करते हैं। और तवक्कल क्या चीज होती है? भरोसा करना असबाब को इख्तियार करने के बाद। जैसे वो बद्दू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था और उसने कहा था कि मैं अपने ऊंट को खुला छोड़ दिया और मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करता हूँ, तवक्कल करता हूँ। तो आपने फरमाया, नहीं, ऊंट की टांग बांधो, फिर अल्लाह पे भरोसा करो। आप दवा लें, अगर बीमार है दवा लें, और फिर कहें कि शिफा अल्लाह के हाथ में, दवा के हाथ में नहीं है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें, फिर कहें रिस्क देना अल्लाह ने है। ये नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठ रहे हैं, खुद ही होता रहेगा सब कुछ, नहीं, ये तवक्कुल नहीं है। तो असबाब इख्तियार कीजिए, कोशिश कीजिए, ये नहीं कि इम्तिहान में पढ़े ही नहीं और कहें मतलब अल्लाह के ऊपर भरोसा, वो खुद ही मुझे पास करेगा, नहीं। तो अल्लाह पे वो भरोसा करते हैं, जब वो मेहनत कर लेते हैं तो अपने हाथों पे भरोसा नहीं करते, अपनी मेहनत पे नहीं करते, अपने रिसोर्सेज पे नहीं करते, कहते हैं अल्लाह के हाथ में। अल्लदीना युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, वो लोग जो नमाज को कायम रखते हैं, कायम आज तो कायम क्या, नमाज पढ़ने वाले कोई नहीं, कायम करना तो दूर की बात, कायम तो वो है कि उसकी सारे आदाब, उसकी सब तमाम शराइत को पूरी करना, तहारत की भी और फिर नमाज के अंदर भी और फिर हर तरह से यानी उसके वक्त की भी पाबंदी करना, ये सब चीजें अपनी जो नमाज के साथ रिलेटेड है उनको पूरा करना, फिर नमाज कायम होती है। और आज ये हाल है कि नमाज को पढ़ने वाला भी कोई नहीं, कि जैसी तैसी भी पढ़ लें वो वाला भी कोई नहीं, क्योंकि नमाजें जा रही हैं, परवाह नहीं है, वक्त गुजर रहा है, गपशप में पड़े हैं। तो कयामत के दिन तो बेनमाजी जो है ना वो फिरौन के साथ होंगे। हम क्या उनके साथ होना चाहते हैं कभी, कि अपनी नमाजों की परवाह ही ना कर। नमाज किसी की अगर एक भी छूट गई तो वो बेनमाजी है। हमें हमारा रज़कना हम यहाँ फिकून, और रिस्क जो अल्लाह ताला ने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं, यानी माल को अपना नहीं समझते कि मेरी मेहनत है मैं क्यों दूं किसी को, बल्कि अल्लाह ताला के रास्ते में देते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनुना हक्का, यही ट्रू मोमिन है, हकीकत में यही मोमिन है। अब बाकी अपने आप को कोई मोमिन कहता रहे, नहीं जी हम बहुत बड़े मोमिन है। हसन बसरी से किसी ने पूछा था ना कि आप क्या मोमिन हैं, तो उन्होंने फरमाया तो मोमिन भी दो तरह के होते हैं। अगर तो तुम ये पूछ रहे हो कि मेरा ईमान अल्लाह पे, योम आखरत पे, फरिश्तों पे, किताबों पे, तकदीर पे, ये इस पे है, तो वो जो ईमानियात, 6 ईमानियात की चीजें हैं वो उन पे है, तो हाँ उस पे तो ईमान है। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो मोमिन जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इन सिफात के साथ बताया है, तो फिर पता नहीं कि मैं मोमिन हूं कि नहीं। तो ये हैं लोग, अब इन सिफात को अगर आप लिख लें फिर इनको बार बार इनको दोहराते रहें कि मैंने मोमिन बनना है, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इन लोगों के बारे में फरमाया ये हैं असल में मोमिन। तो अगर मोमिन बनना है तो फिर मुझे अपने अंदर ये पैदा करना। लहम दराजात इंद रब्बिहिम व मगफिरतुम व रिज़्कुम करीम, उनके लिए बुलंद दर्जे भी हैं अल्लाह के पास, बहुत बड़े रैंक से अल्लाह के यहाँ, क्योंकि सब लोग एक दर्जे के थोड़ी होंगे। ठीक है, अगर कोई जन्नत में चले भी जाए तो आप क्या ख्याल करते हैं जन्नत में सब एक ही मोहल्ले में रहना शुरू कर देंगे? हाँ, एक जैसे सबके घर होंगे, एक जैसे सबकी प्रॉपर्टीज होंगी? नहीं, बहुत बहुत डिफरेंस होगा, बहुत ग्रेड्स में फर्क होगा, कोई लोएस्ट ग्रेड पे होगा, कोई हाईएस्ट ग्रेड पे होगा। हदीस में आता है जन्नत के 100 दर्जे हैं। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला ने फरमाती है जन्नत के 6,666 दर्जे हैं, क्योंकि इतनी आयतें कुरान की हैं और हदीस में आता है ना वो आयतें पढ़ता जाएगा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जाएगा तो उसका अंदर इतने दर्जे, तो वल्लाहु आलम, मगर जन्नत के बहुत सारे दर्जे हैं। दुनिया में अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टेटस ऊंचा हो तो जन्नत में क्या चाहते हैं, लोएस्ट हो? जन्नत में क्यों नहीं, ऊपर का दर्जा पा सकते हैं आप भी, क्यों छो कम पे क्यों कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं? कोई बात नहीं, बस जन्नत में दाखला ही मिल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि हम कोशिश नहीं ना करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, सब कुछ अपना यहाँ के लग लगाना चाहते, जिसका पता ही नहीं अगर कल मर जाए ना तो कितना भी बड़ा घर बना ले, कितना भी खूबसूरत बना ले, कितनी भी हसीना बन जाए, कितना भी पैसा कमा ले, वो सारा जीरो हो जाएगा, फिर भी इसके लिए कितनी मेहनत है। और वहां पे तो मौत है ही नहीं, वहां पे तो कभी मरना ही नहीं, वहां पे तो जो एक दर्जा मिल गया बस उसी पे रहेंगे, कभी मेहनत करके ऊपर नहीं जा सकते। उसके लिए यहां से मेहनत करनी है, यहां से ऊंचे दर्जे लेने हैं, तो अल्लाह ताला चॉइस दे रहे हैं इनके लिए दर्जे अल्लाह के पास, और बख्शिश भी है अल्लाह ताला। इसका मतलब उनकी गलतियां भी होंगी, जाहिर है जो इंसान देखें कुछ करता है तो फिर गिरता भी तो है ना, किसी रास्ते पे चलेंगे कहीं तो गलती भी होगी, कई कमियां भी रह जाएंगी, कोताहियां भी होंगी, भूल भी होगी, तो अल्लाह ताला फिर माफ करने वाला है। रिस्कुन करीम, और इज्जत वाला रिस्क, जन्नत का रिस्क इज्जत वाला, जिसको कोई छीनेगा नहीं, जिसको कोई फेंक के नहीं आगे देगा, इज्जत वाला, इकराम वाला इस रिस्क होगा। आगे अब जंगे बदर की बात शुरू हो रही है।
अब इसके मैंने आपको जैसे कि बता दिया इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो अब उसको अपने जहन में रखते हुए हम आयात को देखते हैं। कमा, जैसा कि, अखरजका रब्बू का मुंबई का बिलहक, निकाला तुझको तेरे रब ने तेरे घर से हक के साथ। कमा, जैसा कि, कैसा कि, इसका क्या मतलब है कमा? अक्सर का ख्याल है कि ये यस अलूना का अनिल अनफाल के साथ रिलेटेड है, कि जैसे कि वो माले गनीमत के बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं, इसी तरह एक इख्तलाफ पहले भी हुआ था, एक डिसएग्रीमेंट पहले भी हुआ था। किस वक्त हुआ था? जब अल्लाह ताला ने आपको निकाला था आपके घर से, तो उस वक्त क्या इख्तलाफ हुआ था? उस वक्त बहुत सारे सहाबाए कराम यानी इस चीज को मान रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है यानी जंग के लिए चलती हैं और काफरों से लड़ते हैं, लेकिन ऐसे भी थे जो चाह रहे थे कि नहीं ऐसा ना किया जाए। वाइना फरीकन मिनल मोमिनीना लकारिहून, और एक फरीक उनमें से ऐसा था जो नापसंद करने वाला था इसको। वो नहीं चाहते थे कि कोई जंग हो, वो नहीं चाहते थे कि किसी के साथ लड़ाई और मार का हो। अल्लाह ताला ने निकाला आपको, इसका मतलब आपका निकलना भी आपकी अपनी प्लानिंग और आपकी अपनी उससे नहीं था, अल्लाह ताला ने आपको निकाला था। अल्लाह निकालने वाला है, हर काम के पीछे अल्लाह ताला की हिकमत और उसका फैसला है। अब आप आगे आगे देखें तो आपको और भी ये बात समझ आएगी। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं कि क्या हुआ, क्या था। इमाम बैहकी ने रिवायत की है कि कुरैश का काफिला शाम से आ रहा था वापस, और उसमें इतना साजो सामान था और उसके साथ 40 के करीब सवार भी थे, जिनमें बड़े बड़े इनके कोई कुरैश के बड़े बड़े लोग भी थे। और ये ऐसा काफिला था जिसमें समझ लें कि कुरैश के हर बंदे का कुछ ना कुछ जरूर उसका हिस्सा था, उसका शेयर था इस काफले में। क्योंकि देखिए जो कैरावान्स जाते थे ना उस जमाने के अंदर ट्रेडिंग के लिए जाते थे, और अहले मक्का के लिए सबसे बड़ा जरिया ही ये था, सोर्स ऑफ इनकम क्या था? ट्रेडिंग। ठीक है, तो काफले जाते थे, सीरिया की तरफ जाते थे, यमन की तरफ जाते थे, कुछ सामान लेके जाते थे, ट्रेडिंग होती थी, उससे इनके गुजारे चलते थे। यहाँ पे कोई ऐसी चीजें तो नहीं थी कि कोई खेती बाड़ी हो रही हो, कोई कुछ उगता तो नहीं था यहाँ पे, खुद से ये कुछ उगाते नहीं थे, पर इस काबिल ही नहीं थी यहाँ की जमीन। तो इनका फिर असल इनकी चलती कैसे थी जिंदगी? इन्हीं ट्रेडिंग से। तो ये काफिला जो था ना बहुत ज्यादा सामान लेकर आ रहा था, और बहुत कीमती यानी बड़ा बड़े इनके माल लेकर आ रहा था, और उसके मुहाफिज भी कम थे। तो उस वक्त अहले मक्का को इसने खबर दी अबू सुफियान ने कि मुझे खतरा है, क्योंकि उसको इत्तला मिल गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं, तो ये ना हो कि ये हमला करें और ये काफले को लूट लें। अब ये उसको क्यों था? क्योंकि जब ये काफला यहाँ से जा रहा था उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने कोशिश की थी कि इस काफले को हम पकड़ लें, लेकिन वो काफला निकल गया। अब कुछ लोगों का ख्याल होता है कि क्यों, क्या जरूरत थी इस चीज की, क्यों उन्होंने ऐसा किया? तो बात दरअसल ये है कि जब से नबी अलैहिस्सलाम और मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुंचे थे, तो उसके बाद से वो कभी चैन से नहीं बैठ सके थे। इतनी ज्यादा उनकी ये स्ट्रेस था कि किसी वक्त भी काफिर हमला कर देंगे, किसी वक्त भी काफिर पीछा करेंगे, किसी वक्त भी काफिर आ जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक दफ़ा हदीस में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों ने कुछ ऐसा आवाज़ सुनी तो वो बाहर निकले, और उन्होंने देखा कि पता नहीं क्या हो गया कुछ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं थे। फिर उन्होंने देखा कि आप आ रहे हैं, तो आपने फरमाया कि कोई बात नहीं है, मैं सब चेक करके आ रहा हूँ, सब ठीक है। लेकिन इतनी हद तक आप लोग सारे जाके सो जाओ, यानी इतनी हद तक उनके वहाँ पे जैसे सिचुएशन ऐसी थी कि किसी वक्त भी अमन नहीं था, या ऑल द टाइम इनकी तरफ से थ्रेट्स थी कि ये किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। फिर साद बिन मुआज एक दफ़ा जब गए हैं उमरा करने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने उमैया उनके साथ उनके ताल्लुकात थे हुमैया बिन खल्फ के साथ, तो उसने उनको अपना मेहमान बनाया हुआ था। अबू जहल ने आके कहा कि अगर इसने तुम्हें अपना मेहमान ना बनाया होता तो फिर मैं देखता कि आप कैसे यहाँ पे आते हैं और आप यहाँ से बच के ना जा सकते, जिंदा नहीं मैं आपको जाने देता। तो साद ने इसका जवाब दिया था कि अगर तुम हमें यहाँ मक्का में आने से रोकोगे, जबकि कोई किसी को हज और उमरे से नहीं रोकता था उस वक्त में, भी कोई दुश्मन भी होता था ना तो आ जाता था, वो कोई किसी को इस काम से नहीं रोकता था, इतना उनके अंदर ये सेंस थी कि नहीं इससे नहीं रोकना। लेकिन मुसलमानों से इनको इतनी दुश्मनी थी कि यानी उमरे पे आने वाले को भी रोक रहे। तो हजरत साद ने जवाब दिया था कि अगर आप लोग हमें यहां से रोकोगे तो हम आप लोगों की तिजारती शाहरा को बंद कर देंगे, क्योंकि वहीं से वो समझ लें आप आज के वर्ड्स में समझ लें हाईवे जो थी ट्रेडिंग की जो राउट था उसको आपका बंद कर देंगे। तो ये जो काफिला जा रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इनका पीछा किया था कि इन लोगों को इनकी ये ट्रेडिंग की जो ये बंद की जाए ताकि ये लोग दुश्मनी से बाज आए। और काफिरों की दुश्मनी एक हम ये समझते हैं कि ठीक है इस वजह से भी ठीक है, अगर सारे बुतों को खत्म करके एक खुदा की पूजा की जाएगी तो यहाँ पे फिर हमारे पास आया कौन करेगा, क्योंकि काबा के साथ तो बहुत सारे बुत पड़े हुए थे, तो सारे ट्राइब्स जो थे कबीले जो थे वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे कुरैश की कि इनके पास हमारा बुत हमारा खुदा पड़ा हुआ नऊज़ुबिल्ला। तो सिर्फ ये बात नहीं थी कि उनको ये डर था कि फिर हमारी आमदनी कम हो जाएगी, फिर हमारा, उनको जो हक से बुग्ज था वो इस कदर इससे ऑब्वियस है कि अगर कोई लोग एक खुदा की इबादत कर रहे हैं और वो यहाँ से चले भी गए हैं तो तुम उनको अब तो जीने दो, लेकिन इस कदर उनके अंदर बुक्स था कि उन्होंने यहाँ पे भी ना इनको छोड़ा। इससे पहले भी आपको पता है मक्का से जब लोग हबशा हिजरत करके गए थे तो ये उनके पीछे वहां भी पहुंच गए कि इनको हमें वापस दे दो, हम इनको सजाएं दें और इनको सताएं और ये इनको हटाएं इस दीन से। अब अगर किसी को सिर्फ ये हो कि हमारी इनकम चली जाएगी या हमारा ऐसे हो जाएगा तो वो जाने दे, ठीक है वो चले गए हैं, अब हमारा उनसे कोई क्या लेना देना, अच्छा है छोड़ दिया यहाँ से हमारी से बला टली, ऐसे सोच सकते थे। लेकिन उन्होंने मुसलमानों को कहीं छोड़ा नहीं, उनका जीना दूभर कर दिया। तो अब अंसार के साथ भी इन्होंने ये चीज की कि साथ बिन मुआज तो अंसार में से थे कि अगर तुम इसके मेहमान ना होते तो फिर मैं तुम्हें बताता, तो उन्होंने भी फिर आगे से धमकी दी। तो ये इससे हमें ये बात मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इस काफले का पीछा किया था और क्यों घर से निकले थे। तो इनिशियली जो घर से निकले थे तो इसलिए निकले थे कि तजारती काफले का पता चला था अबू सुफियान लेकर आ रहा है वहां से, तो उसको उसके ऊपर हमला करने के लिए। और इसी वजह से बहुत सारे सहाबा नहीं भी गए थे कि काफले का ही पीछा करना है, कौन सा कोई जंग है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंडेटरी भी नहीं किया था सबके ऊपर, लाजिम नहीं किया था कि सब चले। ठीक लेकिन अब जबकि अबू सुफियान ने मक्का इतला पहुंचा दी कि हम मुझे खतरा है अगर आप लोग अपने काफले को बचाना चाहते तो फौरन मेरे लिए हेल्प भेजो, ऐसे में जब मक्का में ये तो जाहिर ही बात है सबके शेयर्स हुए में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं लोगों की, तो अबू जहल ने काबा की छत पे खड़े होकर ऐलान किया है मक्का हर मुश्किल और रुसवाई से अपने आप को बचाओ, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफला लूट लिया तो तुम सारे बर्बाद हो जाओ। इन्हीं दिनों में अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब की बहन ने ख्वाब देखा और अपने भाई से कहा मैंने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा, मैंने देखा है कि एक सवार है वो आया और आके कह रहा है एहद शिकन कौम यानी जो जो अपना एहद तोड़ने वाली कौम 3 दिन के अंदर अपनी कतलगाहों की तरफ दौड़, और उसने पहाड़ से एक पत्थर लिया एक रॉक लिया और मक्का के हर घर में उस रॉक से उस चिटान से एक पत्थर टूट के पहुंच गया। तो अब्बास रजी अल्लाह तआला ने ये ख्वाब जो अबू जहल को सुनाया, तो अबू जहल ने कहा कि पहले मर्दों की नबूवत काफी नहीं थी कि अब औरतें भी नबूवत का दावा करना शुरू हो गई, यानी ख्वाब सुनाने शुरू हो गई कि जी हमें ये ख्वाब आ गया। उसने कहा कि छोड़ो इस बात को, चलो निकलो। अब ख्वाब तो सच्चा हुआ, देखिए हर घर में इनके कोई ना कोई मरा, कोई ना कोई जहन्नुम वासिल हुआ। तो अब जब अबू जहल काफला लेके निकला, 1,000 का लश्कर उसने जमा कर लिया था पूरे साजो सामान के साथ, तो उसको जोफा के मकाम पे, जोफा आपको पता ना मीकात है, जोफा पे मीकात होती है, तो जब वो जोफा के मकाम पे पहुंचा है तो उसको इत्तला मिली कि अबू सुफियान तो बीच के साथ साथ ना साहिल का रास्ता लेके और वो सेफली पहुंच गया है। तो उसने कहा है कि आप लोग मक्का वापस चले जाओ। इसने कहा नहीं खुदा की कसम ये तो कभी नहीं हो सकता, हम तो अपने ऊंटों को ज़िबा करेंगे, शराब पियेंगे, हमारी लौंडियां लौंडियां भी साथ लाए हुए थे वो गाने सुनाएंगी और हम तमाम कबाइले अरब को ये बता देंगे कि हम निकले हैं और हम इनके पीछे आए हैं, और यानी यहाँ पे कुछ दिन ठहरेंगे कि लोगों को पता चले कि देखो हमारा मुकाबला करने के लिए कोई नहीं आ सका, सारी दुनिया के अंदर यानी अरब में हमारी धाक बैठ जाएगी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर मैदाने बदर में आ चुके हैं, और मैदाने बदर में कबाइल अपना साल में एक दफा बाजार भी लगाते थे, और आपको इत्तला मिल गई कि अबू जहल इस तरह से आ रहा है काफला लेके, अपना सॉरी लश्कर लेकर आ रहा है। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस वक्त नाजिल हुए और फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपसे दो ग्रोह में से एक का वादा फरमाया, तजारती काफला या लश्करे कुरैश, यानी एक को आप फतह कर लेंगे, या तो आपको काफला मिल जाएगा या कुरैश का लश्कर मिल जाएगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया और कि आपने मतलब क्या करना है, क्योंकि हर मुश्किल और हर मुसीबत में मतलब वो तो निकल आए हुए थे कुरैश मक्का, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, तिजारती काफले पे की तरफ जाना है या फिर आपने इनके साथ लड़ना है। अब असल में ये क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया, इसलिए क्योंकि अंसार ने आपके साथ जो बैत की हुई थी वो इस बात पे नहीं की हुई थी कि अगर आप किसी के साथ लड़ने के लिए निकलते हैं तो हम आपके साथ होंगे, उन्होंने इस पे की हुई थी कि मदीना पे कोई हमला करेगा तो हम आपके साथ हैं। अब देखें यहां पर अब अबू जहल अपना लश्कर लेके आ गया, अब क्या करना है। अब सहाबा ने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह काफले का पीछा करें, दुश्मन को छोड़ दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात ज़्यादा पसंद नहीं आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर ने अच्छी बातें की और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं इसमें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अंसार में से कोई खड़ा होके बोले। तो हजरत साद बिन उबादा खड़े हुए और कहा कि आप वही काम कीजिए जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, और आप जो भी इरादा करेंगे हम आपके साथ हैं। अल्लाह की कसम अगर आप अदन की तरफ भी रवाना हुए तो अंसार में से कोई शख्स आपका साथ नहीं छोड़ेगा। फिर हजरत मिकदाद बिन अमर ने कहा या रसूल आप वही करें जिसका आपको अल्लाह ने हुक्म दिया और हम आपके साथ हैं, आप जहां कहेंगे हम चलेंगे, हम बनी इसराइल की तरह नहीं कहेंगे जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था जाओ मूसा तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। हम आपसे ये कहेंगे कि आप और आपका रब जंग करें, ये हम नहीं कहेंगे, और हम आपके साथ जंग लड़ते रहेंगे जब तक हमारी आंखों की पलकें झपकती रहेंगी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और आपने बरकत की दुआ की और आपने फरमाया कि मैं कुफार के गिरने की जगहों को देख रहा हूं कि यहां यहां पे फलां फलां काफिर गिरेगा। तो इससे पता चला कि कुरैश से मुकाबला करना बाज असहाब को नागवार था। तमाम सहाबा ऐसा नहीं चाहते थे कि हम उन उनके साथ मुकाबला करें। जब ये पता चल गया था कि एक को दो में से एक काफला या एक लश्कर इसको हम फतह कर लेंगे, तो उनका ये था, दिल था कि क्यों ना हम उसकी तरफ जाएं जो कि इजी है। हम क्यों ऐसे की तरफ जाएं जहां पे लड़ना पड़ेगा, और वो जब अल्लाह ताला ने वादा कर ही लिया तो हम काफले की तरफ जाते हैं, और उसी नीयत से तो हम घरों से निकले थे। और अब हमने तो लश्कर की तैयारी भी नहीं की थी कि हम उसके साथ लड़ें। ये देखें, बहुत ही कम तादाद थी मुसलमानों की, कहां वो 1,000 और यहां पे 313। सिर्फ दो घोड़े थे इनके पास, बाकी सारे पैदल थे, और असलहा ना होने के बराबर था। तो उसमें कहा गया कि ये अल्लाह ही है, जैसे अभी ये इसमें इख्तलाफ कर रहे हैं ना माले गनीमत में, इसी तरह ने इन्होंने इस इख्तलाफ किया था उस वक्त जिस वक्त अल्लाह ताला ने आपको घर से निकाला था हक के साथ, और एक फरीक उस वक्त भी ना पसंद करने वाला था। जैसे अभी वो कह रहे हैं कि हमें माले गनीमत मिलना चाहिए, कोई कह रहा हमें मिलना चाहिए, और उनको पसंद नहीं आ रहा ये कि उसको क्यों दिया जाना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। तो इसी तरह उस वक्त भी एक इख्तलाफ हुआ था, लेकिन वो इख्तलाफ भी देखें एंड अप क्या हुआ, उसमें भी खैर ही निकली ना, कि अल्लाह ताला ने जब इनसे जंग करवाई तो उसमें से खैर हासिल हुई। तो अल्लाह का फैसला वहां पे भी हक है, और यहां पे भी जो फैसला अल्लाह रसूल करेंगे उसमें हक है। युजादिलूनक फिल हक बादमा तबय्यना, वो झगड़ रहे थे आपसे हक के बारे में, कि लश्कर की तरफ जाना जो था उसके बारे में आपसे झगड़ रहे थे, कि हम मतलब इस चीज के अंदर उनकी थी कि हम लोग काफले की तरफ जाते हैं। बादमा तबय्यना, इसके बाद की जो वाजे हो चुका, का अन्नामा युसाकुना इलल मौत, ऐसे कि जैसे वो हांके जा रहे हैं मौत की तरफ, वहम यंजुरून, और वो देख रहे हैं उसको, यानी उनको इतनी परेशानी हो गई थी कि जाहिरी बात है एक ऐसा लश्कर सामने आ रहा है जिसका मुकाबला करना ऐसे आप देखें तो इतना मुश्किल है, क्योंकि ना आपकी कुव्वत उतनी है, ना आपकी ताकत उतनी है, ना आपके पास असलहा उतना है, ना आपके पास मैन पावर उतनी है, और वो बड़े बड़े उनके सरदार आ रहे हैं और बड़े बड़े उनके लोग आ रहे हैं। अब कैसे इनको पता चला था कि जिस वक्त के दो लोगों को पकड़ लिया सहाबा ने और उनको लेकर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे, तो उनसे पूछा कि भाई किसके साथ आए हो? उन्होंने कहा हम तो अबू जहल के काफले के साथ हैं। ने कहा नहीं, तुम अबू सुफियान के काफले के साथ। उन्होंने कहा नहीं, हम अबू जहल के काफले के साथ हैं। ने कहा नहीं, तुम कहो, और उनको मारना शुरू कर दिया। तुम कहो तुम अबू सुफियान के काफले के साथ हो। आखिर उन्होंने कहा हाँ अच्छा, हम अबू सुफियान के काफले के साथ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज से फारिग हुए तो पूछा तुम इनको क्यों मार रहे हो? जब वो सच बोल रहे थे तो तुम उनको मार रहे थे, जब वो झूठ बोल रहे हैं तो तुमने उनको छोड़ दिया। तो फिर आपने उनसे पूछा कि वो कितने ऊंट जिबा किए जाते हैं वहां पे एवरी डे खाने के लिए? तो उन्होंने कहा कि 10 ऊंट। तो इससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि 1,000 लोग हैं, और फिर उन्होंने बताया कि उसमें फलां है फलां है फलां है। तो इससे उनको अंदाजा हो गया था कि वो काफला कितना बड़ा है जो हमारी तरफ आ रहा है। अल्लाह ताला ने ये मुंडभेर करवानी थी, ये मुकाबला करवाना था, ये कार्रवाई करवानी थी अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला का यही मंशा था। और यहाँ पे ये हालत हो रही थी कि वो ये सोच रहे थे कि ये मौत के मुंह में जाना है,